ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। तो आज हम श्रीमद् भागवत के हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 17 महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना श्लोक क्रमांक 29। धरोवाच नमः परस्मै पुरुषाय मायया विन्यस्ता नाना तनवे गुणात्मने नमः स्वरूपा अनुभवेन विरधूता द्रव्या क्रिया कारक विभ्रमा उर्मये। धरोवाच नमः परस्मै पुरुषाय मायया विन्यस्त नानातनवे गुणात्मने नमः स्वरूपानुभे अनुभवेन निर्धुता द्रव्यक्रियाकारक विभ्रम उर्मये। धरोवाच नमः परस्मै पुरुषाय मायया विन्यस्त नानातनवे गुणात्मने नमः स्वरूपानुभवेन निर्धुता द्रव्यक्रियाकारक विभ्रम उर्मये। धरोवाच नमः परस्मै पुरुषाय मायया विन्यस्त नानातनवे गुणात्मने नमः स्वरूपानुभवेन निर्धुता द्रव्यक्रियाकारक विभ्रमोर्मये। धरोवाच नमः परस्मै पुरुषाय मायया विन्यस्त नानातनवे गुणात्मने नमस्वरूपान भवेन निर्धुता द्रव्यक्रियाकारक विभ्रमोर्मये नमः परस्मै पुरुषाय मायया विन्यस्त नाना तनवे गुणात्मने नमः स्वरूपानुभवेन निर्दुत द्रव्यक्रियाकारक विभ्रमोर्मये मतजी उवाच पुरुषाय मायया विन्यस्त नाना तन्वे गुणात्मने नमस्वरूपानुभवेन निर्धुत द्रव्यक्रियाकारक विभ्रमोर्मये तरोवाच विन्यस्तनानातनवे गुणात्मने नमस्वरूपानुभवेन निर्धूत द्रव्यक्रियाकारक विभ्रमोर्मये धरा पृथ्वी वाचा बोली नमः मैं नमस्कार करती हूँ परस्मै सत्व को पुरुषाय पुरुष को मायया माया से विन्यस्त विस्तारित नाना अनेक तनवे जिसके रूप गुण आत्मने तीनों गुणों के स्रोत को नमः नमस्कार करती हूँ स्वरूप वास्तविक रूप का अनुभवेना समझकर निर्धुत अप्रभावित द्रव्य पदार्थ क्रिया कर्म कारक कर्ता विभ्रम मोह उर्मये भवसागर की तरंगे। अनुवाद और तात्पर्य परम कृष्ण कृपाश्री मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। पृथ्वी ने कहा, हे भगवान, आपकी स्थिति दिव्य है और आपने अपनी माया के द्वारा तीनों गुणों की अन्योन्य क्रिया से स्वयं को नाना रूपों तथा योनियों में विस्तार करके रखा है। अन्य कुछ स्वामियों से भिन्न आप सदैव दिव्य स्थिति में रहते हैं और भौतिक सृष्टि द्वारा प्रभावित नहीं होते, जो विभिन्न भौतिक अन्योन्य क्रियाओं से प्रभावित है। फलतः आप भौतिक कर्मों से मोहग्रस्त नहीं होते। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब राजा पृथु ने राज्य आदेश सुनाया तो पृथ्वी समझ गई कि राजा भगवान का साक्षात शक्त्यावेश अवतार है। फलस्वरूप राजा भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ जानते हैं, अतः पृथ्वी उसे धोखा नहीं दे सकती। पृथ्वी पर आरोप लगाया गया था कि वो जड़ी बूटियां तथा अन्नों के बीजों को छिपाए हुए है, अतः वो ये बताने जा रही थी कि उन्हें किस प्रकार पुनः प्रकट किया जा सकता है। पृथ्वी को पता था कि राजा उस पर अत्यंत क्रुद्ध है और उसे आभास हुआ कि जब तक उनके क्रोध को वो शांत नहीं कर लेती तब तक उनके समक्ष कोई सकारात्मक कार्यक्रम रखवाना असंभव है। अतः प्रारंभ में विनीत भाव से वो अपने आप को भगवान के शरीर का अंश रूप में प्रस्तुत करती है। वो निवेदन करती है कि भौतिक जगत में जितने भी देह प्रकट होते हैं वो विराट शरीर के ही अंग होते हैं। यहां ये कहा जाता है कि अधोलोक में पांव से अंश सॉरी जो अधोलोक यानी कि नीचे के लोग जो हैं वो भगवान के पांव के अंश हैं, चरण के अंश हैं, और उच्च स्तर के लोग उनके शीश के अंश हैं। भगवान इस भौतिक जगत सृष्टि अपनी बहिरंगा शक्ति से निर्माण करते हैं, किंतु एक प्रकार से बहिरंगा शक्ति उनसे भिन्न नहीं है, किंतु साथ ही भगवान बहिरंगा शक्ति प्रकट नहीं होते, वरन वे सदैव आत्मशक्ति में स्थित होते हैं। जैसा कि भगवद गीता 9.10 में कहा गया है, मया त्यक्षेण प्रकृति ही, भौतिक प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है, अतः भगवान बहिरंगा शक्ति से अनासक्त नहीं है। इस श्लोक में उन्हें गुण आत्मा कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ यह है भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों का, भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों का स्रोत यानी भगवान स्वयं। जैसा कि भगवद गीता में 13.15 में कहा गया है, निर्गुणम गुण भ्रक्तृ च, बहिरंगा शक्ति से अनासक्त रहकर भी भगवान उसके स्वामी हैं। इस प्रसंग में भगवान चैतन्य को, चैतन्य के दर्शन का सरलता पूर्वक समझाया जा रहा है कि भगवान एक ही समय अपनी सृष्टि के साथ है तथा भिन्न भी है, अचिंत भेदाभेद तत्व। पृथ्वी कहती है कि यद्यपि भगवान बहिरंगा शक्ति से आसक्त हैं, फिर भी वो निर्धूत हैं। वे निर्धूत का अर्थ है प्रभावित नहीं रहते उससे। भगवान सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति में स्थित रहते हैं, और अतः इस श्लोक में कहा गया है स्वरूप अनुभवेना, भगवान सदैव अपनी अंतरंग शक्ति में स्थित रहते हैं, फिर भी उन्हें बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्तियों का पूरा ज्ञान रहता है। इस प्रकार उनका भक्त सदैव दिव्य स्थिति में रहते हुए भौतिक शरीर से आसक्त हुए बिना भगवान की सेवा करता है। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, जो भक्त सदैव भगवान की भक्ति में लीन रहता है, वो अपनी भौतिक स्थिति की परवाह न करते सदैव मुक्त रहता है। यदि एक भक्त दिव्य बना रह सकता है, तो फिर श्री भगवान के लिए सर्वथा संभव है कि वे बहिरंगा शक्ति से आसक्त हुए बिना अंतरंगा शक्ति में बने रहे। इस स्थिति को समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार भक्त अपनी भौतिक देह से मोहग्रस्त नहीं होता, उसी प्रकार भगवान इस भौतिक जगत की बहिरंगा शक्ति से कभी भी मोहग्रस्त नहीं होते। भक्त के लिए भौतिक देह कभी व्यवधान नहीं बनती है, यद्यपि वो प्राकृतिक देह में स्थित होता है, रहता है, जो अनेक भौतिक परिस्थितियों के द्वारा संचालित है। यथा शरीर के भीतर 5 प्रकार के वायु हैं और अनेक अंग भी हैं, हाथ पांव जीभ लिंग गुदा इत्यादि कर्मेंद्रिय हैं, और ये सब अलग अलग ढंग से कार्य करते हैं। आत्मा अर्थात जीवात्मा, जो कि अपनी स्थिति से परिचित होता है, निरंतर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के कीर्तन में रत रहता है। उसका शारीरिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं होता। यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत से संबंधित हैं, किंतु वे सदैव आत्मशक्ति में स्थित रहते हैं, और भगवान और भौतिक जगत के कार्यों से अनासक्त बने रहते हैं। जहां तक भौतिक शरीर का प्रश्न है, उनमें 6 प्रकार के तरंगे तथा लाक्षणिक भौतिक अवस्थाएं दिखती हैं, भूख प्यास शोक मोह जरा और मृत्यु, हंगर थर्स्ट लेमेंटेशन इल्यूजन ओल्ड एज एंड डेथ। मुख्य जीव कभी इन 6 से कोई प्रयोजन नहीं रखता। समस्त भगवान समस्त शक्तियों के सर्वशक्तिमान स्वामी होने के कारण बहिरंगा शक्ति से कुछ संबंध रखते हैं, किंतु वे भौतिक जगत में बहिरंगा शक्ति की प्रतिक्रियाओं से सदैव स्वतंत्र रहते हैं। हरे कृष्णा। बहुत लंबा दीर्घ और सुंदर गहरा तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखा है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऐसा लग रहा था कि प्रभुपाद जी का तात्पर्य चलता ही रहे, इतना सुंदर और सरल भाषा में प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। श्रीमद् भागवत बहुत ही गहरा ज्ञान है और जीव के लिए सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, अमलम पुराणम है, और हर स्थिति में जीव को सर्वोच्च स्थिति पर लाने के लिए पूर्णतः सक्षम है। श्रीमद् भागवत का पठन करने से साक्षात श्री कृष्ण के संग का अनुभव होता है, और श्री कृष्ण का संग का केवल अनुभव न होता है, श्री कृष्ण का चिरंतन संग भी वो प्राप्त करा देते हैं। तो श्रीमद् भागवत की विशेष शक्ति है। श्री कृष्ण भगवान अपने धाम में अंतर्धान होने के बाद में प्रकट हुआ, ये ऐसा क्षितिज के ऊपर प्रकट हुआ ये तारा है, श्री कृष्ण भगवान के दैहिक अनुपस्थिति को यहाँ पर पूरा करता है। इसलिए जीव को, जो जीव भगवान की अभिलाषा करता है, उसके लिए श्रीमद् भागवतम बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद जी ने राधा दामोदर मंदिर में एकांत में गहरे चिंतन में मनन में रहते हुए, अति उत्कट भावना में अपने आप को मग्न रखते हुए इस श्रीमद् भागवत का तात्पर्य लिखा है। और ये तात्पर्य को जिससे हमने पढ़ा, एक पढ़ा भी, ऐसे हजारों हजारों तात्पर्य उन्होंने लिखे हैं, और वो कहते हैं कि ये तात्पर्य जो है ये मेरे आत्मा के अति आनंद की जो लहरें हैं उसका प्रकट्य है, इट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ माय एक्सटेसी। तो ये केवल दर्शन नहीं है, तत्विक दर्शन नहीं है, तत्विक दर्शन जो है वो श्रील प्रभुपाद जी के दिव्य आध्यात्मिक आनंद पूर्ण जो अनुभूतियां हैं, दिव्य आध्यात्मिक जो गहरी आनंद की अनुभूतियां हैं उसका ये प्रकट्य है। तो हो सकता है कि हमें लगे कि बहुत गहरा फिलोसॉफिकल नॉलेज इसमें भी है, लेकिन उसका अधिष्ठान प्रेम है, उसका अधिष्ठान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण और भक्तिपूर्वक सेवा का आनंद है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी इसको लिखते समय राधा दामोदर जी के जो गोसाई थे उस समय वो युवावस्था में थे, निर्मल चंद्र जी, वो प्रसाद रखते थे उनके कमरे के बाहर दोपहर में राजभोग का, तो शाम तक कभी कभी ऐसे ही पड़ा रहता था। शाम को जब अपने दिव्य अवस्था से सेवा श्री राधे श्याम हरे कृष्णा, मैंने भी मेरा बंद कर दिया आते ही तो यही हमको समझना है। श्री प्रभुपाद जी जब इसका तात्पर्य लिखते थे तो कोई अन्य विचार भी नहीं करते थे, भूख प्यास यहां पर वर्णन किया ना उन्होंने, कौन से वेग है हमारे लिए जो हमको वश में रखते हैं जब तक शरीर में है, हाँ, भूख प्यास शोक मोह जरा और मृत्यु, ये भूख प्यास से भी प्रभुपाद जी उस समय निवृत्त थे। इतने आध्यात्मिक स्तर पर श्री कृष्ण प्रेम में वो रत रहते थे और उसमें ये उन्होंने तात्पर्य लिखे। तो इसलिए हम श्री प्रभुपाद जी के बहुत ऋणी हैं, क्योंकि उन्होंने श्रीमद् भागवत का महत्व समझते हुए सबसे पहले श्रीमद् भागवत का अनुवाद किया। ऑफकोर्स उसके पहले भगवद गीता का किया था, इसके बाद तुरंत श्रीमद् भागवत को अपने हाथ में लिया। तीन खंडों को लिखने के बाद में वो यहां से चल पड़े। वो लिखते हैं एक जगह पर, गुप्त जगह में, कि श्रील रूप गोस्वामी ने उनको दर्शन दिया योग्य समय पर, सभी संप्रदायों के, सभी संप्रदायों के, हमारे सब संप्रदाय के सभी आचार्यों के साथ में सबने उनको आदेश एवं आशीर्वाद दिया कि आप अभी चाहिए। फिर वो दिल्ली गए, फिर वहां से वो घूमते घामते कलकत्ता, शांतिपुर, जगन्नाथपुरी, मुंबई करते हुए फिर अमेरिका चले गए। रही श्रीमद् भागवत का अनमोल रत्न जो है उनके लिए प्रस्तुत किया और रात रात भर जगकर वहां पर भी सेवा करते 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 प्रचार करते करते रात रात भर इसके परपोट लिखते रहे। एक समय ऐसे आया कि लगा कि उनको कि मैं बहुत समय नहीं जीऊंगा, तो उन्होंने डायरेक्ट दशम स्कंद का कथा रूप में अनुवाद किया और दुनिया के लिए प्रस्तुत किया उसको जॉर्ज हैरिसन के माध्यम से। और फिर अपना श्रीमद् भागवतम जारी रखा और वो ब्रह्म सम्मोहन लीला तक स्वयं पहुंचे और यहाँ ही अपने कमरे में आखिरी दम तक उन्होंने ब्रह्म सम्मोहन लीला का अनुवाद किया, जबकि उनके शरीर में कोई शक्ति नहीं थी, केवल मांस मांस समाप्त, केवल चर्म और हड्डी बची थी, अस्थि और चर्म, ना उनको अपनी पलक भी उठाने की शक्ति नहीं थी। भक्त लोग पलक भी उठाकर दिखाते थे, प्रभुपाद जी देखो कौन आया, फिर उनकी पलक गिर जाती, इतने कमजोर थे, फिर भी उनकी आत्मा पूर्णतः प्रफुल्लित थी, पूर्णतः सब सचेतन चेतनामय चेतना पूर्ण थी। और वो मुख से उनके ऊपर ऐसे जिक्टापन रखते हुए भक्त लोग उनको श्रीमद् भागवत का श्लोक सुनाते थे, फिर ये वर्ड टू वर्ड अनुवाद वो करते थे, फिर एक वाक्य में अनुवाद करते थे, फिर तात्पर्य बोलते थे। उसकी फोटो है प्रभुपाद जी क्वार्टर्स में, हा? कितना उनका चेतना तल्लक होगा, अलर्ट होगा उस समय। देखो ऐसी अवस्था में लोगों की अवस्था कैसी होती है, हम तो हॉस्पिस में देखते हैं ना, लोग तो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते उस समय, लेकिन प्रभुपाद जी उधर थे जहां पर उनकी सेवा थी चेतना से, और आखिरी दम तक उन्होंने ये सेवा किया। तुम्हारे लिए अमूल्य ग्रंथ है, क्योंकि ये इतना आसानी से हाँ 2 साल की छुट्टी लेकर प्रभुपाद ने लिखा नहीं है इसको, तो समय था, समय कहाँ था, अपनी निद्रा से निकाल कर ये सब लिखा हुआ। निद्रा को कौन त्याग कर सकता है और कौन स्वस्थ रह सकता है उनको त्याग कर। निद्रा एक बहुत जरूरी चीज है आयुष्य में, हमारे जीवन में, वो शरीर को सही रखती है। निद्रा समय पर नहीं मिलती है, जितनी चाहिए उतनी नहीं मिलती है, तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है, कभी बीमार हो जाते हैं, कैंसर हो जाता है आगे जाकर। लेकिन प्रभुपाद जी दिव्य आत्मा थे, उन्होंने अपनी निद्रा को भी त्याग करते हुए हम सबके और आने वाले अनेक पीढ़ियों के कल्याण के लिए, 10,000 वर्ष तक जितने भी जीव इच्छुक होकर भगवान की सेवा में आना चाहते हैं उनके लिए उन्होंने इतना मेहनत किया है। 10,000 साल तक ही इसका प्रभाव रहेगा, आगे भी रहेगा, लेकिन 10,000 साल तक रहेगा ही रहेगा। श्रीमद् भागवत के प्रसंगों से हमें अवगत कराना हमारे आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए प्रभुपाद जी ने किसी अन्य पुराण या किसी अन्य ग्रंथ को न रखते हुए हर रोज श्रीमद् भागवतम का पाठ जो है वो अपने मंदिरों में शुरू किया। सुबह रोज श्रीमद् भागवत का पाठ होना है, क्लास होना है, क्योंकि नित्यम भागवत सेवा, जब श्रीमद् भागवत का हम संग करते हैं, नित्य श्रवण और कर्ण के माध्यम से हम श्री कृष्ण का उत्कट संग करते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हुए हमको सब कुछ छोड़कर बैठना चाहिए, कुछ भी मन में विकार उस समय के लिए सब बंद, और एकाग्र होकर सुनना चाहिए। जितना आप एकाग्र होकर सुनेंगे उतना हम सब लोग श्रीकृष्ण के साथ में रहेंगे, भले वो प्रहलाद महाराज की कथा हो, भले वो ध्रुव की कथा हो, भले और किसी कथा हो, पांडव की कथा हो, भीष्म देव की हो, परीक्षित महाराज की हो। श्रीमद् भागवत का मतलब क्या है, भक्त चरित्र और कृष्ण चरित्र और भगवत वाणी और भक्तवाणी। फिर नारद जी बोल रहे हैं, फिर मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं, फिर बहुत सारे संत बोल रहे हैं, इसमें कई प्रसंग है, कई प्रसंग में वार्तालाप है ये इनका सब लोगों का, तो सब श्री कृष्ण के विषय में चर्चा कर रहे हैं सब लोग, और कोई भी भौतिक चीजों के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, कैसे इंद्रिय भोग मिले, कैसे आराम मिले, कैसे जीवन में अच्छे कर्मों का फल प्राप्त करके रहना चाहिए, ये सबका वर्णन इसके अंदर नहीं है, इसलिए इसको अमलम पुराणम कहा गया है। तो इस प्रसंग में हम 4th स्कंद में महाराज पृथु की कथा सुनते हैं, और महाराज पृथु जो है स्वयं भगवान के शक्त्यावेश अवतार है, भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं, बहुत ही शक्तिशाली राजा हैं, ऐश्वर्य संपन्न हैं, जो दिव्य स्थिति में है, उनका जन्म कैसे हुआ था? वेणा वेण दुधा, बहुत पापी था वो, बहुत भयंकर पाप किए थे उसने राजा का होते हुए, पूरा दुरुपयोग करते हुए अपने इंद्रिय भोग के लिए स्वयं पृथ्वी का मतलब जगत का वैसे विनाश ही कर रहा था वो। तो साधुओं ने अपने बल से उसको नष्ट करके उसी में से ऋतु राजा का जन्म हुआ। और ऋतु महाराज ने फिर बिगड़े हुए स्थिति को साधारण करने का प्रयास शुरू किया। तो वो तब सब प्रजा जो हैं, जब तक वो वेणा थे तब तक तो कोई सामने आने के लिए हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन जब वेण का देहांत हो गया तो फिर सब लोग हिम्मत करके ये जानते हुए कि अभी जो राजा हैं वो धर्मशील हैं, स्वयं भगवान हैं, ये विश्वास से वो सब लोग उनके पास में गए और उन्होंने अपनी यातना रखी उनके सामने कि हम लोग बड़े दुखी हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, कैसे भजन कर सकते हैं, हमारे लिए बिल्कुल प्रतिकूल स्थिति है, तो मर रहे हैं, तो मरने ही वाले हैं, अगर आगे कुछ नहीं हुआ तो शरीर छूट जाएगा हमारा, तो जीवन की उद्देश्य को कैसे प्राप्ति करेंगे। तो राजा ने बहुत ध्यान से इस त्रस्त और पीड़ित जनता का निवेदन सुना और उस पर बहुत गहरा चिंतन किया। राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा के कल्याण के लिए, प्रजा के आनंद के लिए, प्रजा के सुख के लिए, प्रजा के सारी अच्छी व्यवस्था के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के अनुकूल व्यवस्था बनाने के लिए चिंतन करना प्रजा का प्रथम कर्तव्य है। इसलिए श्रीमद् भागवत में पढ़ते हैं परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज, इतने बड़े बड़े राज ऋषियों का वर्णन सुनते हैं, उनका गौरव सुनते हैं और उनका प्रभाव देखते हैं कि जब वो थे तो पृथ्वी में कैसी अवस्था थी, कभी भी रात के बिना जल नहीं गिरता था आकाश से, वो भी पर्याप्त मात्रा में जितना जरूरी है, जब लोग सो रहे हैं तभी ही बारिश होती थी, कभी बाढ़ नहीं आती थी, कभी तूफान नहीं आता, कभी आंधी नहीं आती थी, कभी कम वर्षा नहीं होती थी, हवा, सूर्य प्रकाश, वर्षा सब पर्याप्त मात्रा में और सही समय पर हुआ करती थी, कभी कोई निसर्ग के प्रकोप से कष्ट प्राप्त नहीं करता था। ये केवल राजा के एक सुदृढ़ और सही भक्त रूप राजा के होने से होता था। तो जब ये विपरीत स्थिति है तो फिर राजा पृथ्वी ने इसका चिंतन किया, मनन किया और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि पृथ्वी इसका मूल कारण है। पृथ्वी ने अपने सारे जो दिव्य बीज, जो फल फूल और धान्य के लिए ब्रह्मा जी ने निर्माण किए थे, तो पृथ्वी ने अभी छुपा के रखे हैं, इसका काम है सबके लिए देने का, लेकिन पृथ्वी ने उसको अपने पास छुपा के रखे और प्रकट नहीं कर रही है, उसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है, फसल नहीं आ रही है, लोग भूखे मर रहे हैं। तो धनुष उठाया, बाण लिया और पृथ्वी पर निशाना लगाया, तो पृथ्वी समझ गई तो दिव्य देवता है वो भी, तो वो गाय का रूप लेकर भागने लगी। वो कहते हैं पाताल लोग, स्वर्ग लोग, पृथ्वी लोग की सब इलाकों में सब जगह भाग रही थी वो, सब जगह धनुष बाण हाथ में लिए ताने हुए ऋतु महाराज उनका पीछा कर रहे थे। और फिर वो समझ गए कि मैं बच नहीं सकती अभी, तो वो तुरंत भगवान को शरण आए और भगवान से अपना निवेदन आरंभ किया। भगवान ने पहले उसको बहुत डांटा कठोर शब्दों में, क्योंकि कहती है कि कांप रही थी, थर 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 कांप रही थी, भगवान का वो क्रोध पूर्ण आवेश उनके नेत्र देखकर, उनका क्रोध देखकर, उनका उद्देश्य अभी मुझे खत्म करने वाले हैं ये उद्देश्य देखकर वो भयंकर कांप रही थी। जब रुखी और शरणागत हो गई तो भी भगवान का क्रोध समाप्त तो नहीं हो रहा था। भगवान बोलते गए तो तू महाराज, और फिर पृथ्वी ने बोलना शुरू किया कि मेरे ये दिव्य बीज छुपाने का कारण ये है कि पृथ्वी के बहुत पापी राक्षसी राजाओं ने मेरा गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ये दिव्य बीज के द्वारा जो उपज आती है वो स्वयं के भोग के लिए लेकर अन्य लोगों को पीड़ित करने का जो कार्य किया है, इसलिए मैंने उसको छुपाना शुरू किया, मैं प्रकट करना छोड़ दिया उसको, क्योंकि मैं जब मैं अपने आंखों के सामने देख रही थी कि जो भी मैं दे रही हूं जिसका उद्देश्य भगवान की सेवा में होना चाहिए, भगवान की सेवा के लिए अनुकूल बनने के लिए करना चाहिए, वो ना होते हुए लोग इंद्रिय भोग के लिए और पाप कर्म करने के लिए कर रहे हैं, तो मैंने उसको प्रकट करना छोड़ दिया। पृथ्वी का ये नियम है, जब पृथ्वी ऐसा कहते हैं कि पृथ्वी को किसी चीज का भार नहीं होता, पृथ्वी में इतने करोड़ों लोग रहते हैं, अभी आज 650 करोड़ लोग रहते हैं, अरे उनका तो शायद 650 लोगों का वजन एकत्र करेंगे ना तो एक हिमालय की चोटी का वजन भी नहीं होगा उसका, इतने सारे हिमालय की चोटियां हैं, इतने सारे रेंज, रेंज कहते हैं उसको, फिर सह्याद्री है, फिर विंध्याचल है, फिर वो आल्प्स है, और अमेरिका में है, फिर इंग्लैंड में है, फिर यूरोप में है, क्या क्या स्विट्जरलैंड में है, इतने सारे पर्वत हैं, इतने सारे स्थान हैं, और 650 करोड़ जनता है, फिर भी पृथ्वी को कभी भी भार नहीं होता है उसका। जैसे कि एक माँ को उसके बच्चे पेट में अगर जो 4 बच्चे भी हैं गर्भावस्था में तो भी उसको भार नहीं होता है उसका, दिल से उसको लगता है बढ़िया है, बहुत चीज प्रेम के कारण। लेकिन असत्य और पाप, इन दो वस्तुओं को पृथ्वी नहीं झेल सकती, वो चाहे छोटा सा भी हो या बड़ा हो, जब असत्य और पाप निर्माण होता है तो उसका बोझ पृथ्वी स्वीकार नहीं कर सकती है। वो बहुत उसको कष्ट होता है, उसका बहुत भार होने लगता है, तब पीड़ित होकर वो फिर भगवान के पास, ब्रह्मा जी के पास जाती है, ब्रह्मा जी उनको भगवान के पास लेके जाते हैं, उसके बाद भगवान अवतार लेते हैं। तो जब ये असत्य और पाप की वृद्धि होती है तब पृथ्वी अपना जो साधन है, जो उनके पास आपके लिए है, जो देती है, वो कम कम करने लगती है। पृथ्वी का उपयोग अभी लोग चरस गांजा बनाने में करते हैं, है ना, पृथ्वी का उपयोग अभी लोग केवल जानवरों को चराने के लिए करते हैं, जिनको काटकर आदमी को खाना है। ऐसे कहते हैं एक जानवर जितनी जगह पर चरता है उतने जगह पर 16 आदमियों का खाना निर्माण हो सकता है, केवल एक ही जानवर पलता है। 16 times more इंसान के लिए पृथ्वी उपज दे सकती है, जो केवल घास बनाकर जानवरों को खिलाते हैं, वो जानवर को केवल एक व्यक्ति खाता है, मतलब प्रपोर्शन के हिसाब से। तो इतना पृथ्वी का दुरुपयोग किया जा रहा है, शास्त्र कहता है, स्पिरिचुअल साइंस नहीं कहता है, मैं मटेरियल साइंस की बात कर रहा हूं, जो भौतिक साइंस है, जो रिसर्च करते हैं, वो कहते हैं कि अगर पृथ्वी में सब लोग चरस गांजा धतूरा वगैरह वगैरह बनाना छोड़ देंगे, ओपियम अफूम अफीम ये बनाना छोड़ देंगे, और ये नॉन वेज खाना बंद कर देंगे, जानवरों को काट कर खाना बंद कर देंगे, केवल शाकाहार खाएंगे, तो पृथ्वी आज की स्थिति में, कल की परसों की नहीं बोल रहा हूं मैं, पिछली दिन बोल रहा हूं, आज के कलयुग की स्थिति में 30 गुना लोगों को भोजन करा सकती है। मतलब आज अगर 650 करोड़ है, 19,500 करोड़ लोगों को भरपेट खाना पृथ्वी खिला सकती है। समुद्र में से आपको चाहे जितने रत्न मिल सकते हैं, कहीं वर्षा की कमी नहीं होगी, अवर्षण नहीं होगा, अकाल नहीं पड़ेगा, इतनी पृथ्वी में शक्ति है। लेकिन हम देख रहे हैं फिर भी लोग भूखे मर रहे हैं। इथियोपिया में एक ब्रेड का जो स्लाइस होता है वो 4 लोग बांट के खाते हैं, और बच्चे लोग कचरे के अंदर से जाकर कुछ चुन चुन के खड़ा हुआ अन्न खाते हैं, और बच्चे लोग जाके गौमूत्र के ऐसे हाथ पकड़ के पानी पीते हैं क्योंकि उनको पानी नहीं है, गौमूत्र पीते हैं, और गाय के साथ और सुअर के साथ में शेयर करते हैं खाना गटर में से। ऐसी स्थिति क्यों है? क्योंकि पापी लोगों की संख्या बढ़ गई है, अनाचार करने वाले लोगों को, पृथ्वी पर पाप के रूप से अत्याचार करते हैं, इसलिए पाप पृथ्वी उनको धीरे धीरे अपना जो साधन है वो कम कम करने लगती है। इसमें एक वरदान है कि आप जैसे भक्त लोग जप करते हैं और कीर्तन करते हैं, उससे पृथ्वी अभी भी अन्न दे रही है। रूपा जी ने कई जगह लिखा है कि आज भी अगर आपको कहीं वर्षा दिख रही है, कहीं हरियाली दिख रही है, कई फल फूल दिख रहे हैं, कई भोजन मिल रहा है आपको, इसका मतलब भक्त लोग अभी भी कीर्तन कर रहे हैं। इसलिए भगवान के नाम का कीर्तन करना, ये इसमें काउंटर क्या कहते हैं उसको, जब विष आता ना, विष तो हम लोग उसको दवा देते हैं, विष के खिलाफ उसको कहते हैं एंटीडोट, उससे विष का प्रभाव कम हो जाता है। तो हरिनाम संकीर्तन जो है पृथ्वी के लिए भोजन है, पृथ्वी के लिए अमृत है। जब इसका लोग कीर्तन करते हैं, मुख से वाणी से उच्चार करते हैं, तो पृथ्वी को पोषण मिलता है। तो जो अत्याचार हो रहा है उस पर मलम पट्टी होती है, और पृथ्वी अगर ना भी देना चाहे फिर भी थोड़ा दे देती है। जब तमाल कृष्ण महाराज जी मेरे ख्याल से कहीं गए थे, जर्मनी में गए थे शायद, एक कंट्री में गए थे, वहां पर अवर्षण हो गया था, मतलब पानी नहीं गिर रहा था, कई दिन से उधर वर्षा नहीं हो रही थी, अकाल पड़ रहा था, मतलब नेशनल इश्यू हो गया था सब जगह पर, टीवी पे पेपर में और सब लोग भाषणों में यही बोल रहे थे कि बारिश कब होगी, भोजन नहीं मिल रहा है। उस समय तमाल कृष्ण महाराज अपने भक्तों को वहां लेकर वहां पहुंचे, उन्होंने एकदम श्रद्धा से और भाव से बोल दिया कि अभी कीर्तन करेंगे तो वर्षा होगी। तो किस रिपोर्टर ने उसको सुना और अगले दिन हेडलाइन पेपर में आ गया कि वर्षा होगी हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से। तो भक्त लोगों को लगा अरे महाराज जी से क्यों बुला रहे, नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, हमारे संस्था का, हमारे आंदोलन का तो पूरा मतलब आदर समाप्त हो जाएगा, हम लोग का प्रचार भी समाप्त हो जाएगा, ऐसे क्यों इतना बोल्ड स्टेटमेंट इन्होंने किया। दोबारा फिर ये जब हुआ तो और पत्रकार आए उनको पूछने के लिए, अरे क्या आप कह सकते हैं यकीन से, कह सकते हैं? उन्होंने कहा जरूर कह सकते, अगर आप सब लोग मिलकर कीर्तन में आएंगे रोड पर तो आपको ये चमत्कार दिखाई पड़ेगा। और भक्त बोले महाराज क्यों ऐसा बोल रहे हैं, मन में बोल रहे हैं महाराज ऐसे क्यों बोल रहे हैं, इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं, नहीं हुई वर्षा तो क्या हुआ। लेकिन महाराज तो महाराज है, वो तो उनकी इतनी श्रद्धा है भगवान के ऊपर, हरिधाम के ऊपर, नहीं बोल दिया। फिर प्रधानमंत्री तक बात पहुंची उस देश के, और उन्हें उनको सबको सेटिंग करा के दिया, सब लोग लोकल लोग भी शामिल हो गए उसके अंदर। तमाम कृष्ण महाराज ने कीर्तन शुरू कर दिया रोड पर, अरे 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, आकाश में एक बूंद भी कहीं दिखती नहीं कि बादल आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, कुछ होने वाला है। तो भक्त लोग तो बिल्कुल परेशान हो गए थे, और तमाम कृष्ण महाराज जी समझ रहे थे कि भक्तों के हृदय में कितनी हलचल है। हाँ, क्योंकि क्या है ना, श्रद्धा भी ऐसे कम ज्यादा होती है ना, किसकी बहुत है किसकी कम है, किसी की नवसिखिया की बहुत कोमल है, किसी की दृढ़ है, किसी की निष्ठा के रूप में है, तो जानते थे। तो बार बार भी बोलते थे डोंट वरी, चिंता मत करना, प्रेम से श्रद्धा से कीर्तन करना, आपका काम श्रद्धा से करना है, देना कि नहीं उनके हाथ में है, डोंट वरी, आपका कर्तव्य करना आपकी तरफ से पूरा। ऐसा संदेह में और संशय में डाउटफुल रहते रहते करेंगे तो क्या उसका रिस्पॉन्स मिलेगा आपको, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये श्रद्धा आपकी जैसी होगी वैसा प्रतिसाद मिलेगा। तब प्रभुपाद जी ने कहा है कि जहां हरिनाम संकीर्तन करते हैं वहां वर्षा होती है, तो फिर उनके उत्साह से भक्त लोग और प्रेम से और श्रद्धा से करने लगे, और कई घंटों के बाद में घने बादल आकाश में छा गए और बहुत घनघोर वर्षा हो गई। मैं 2-3 दिन पहले ही पढ़ा उसको, हाँ फिजी, फिजी कई वैसे देश में, तो यस आप जहां भी रहेंगे और जहां भी श्रद्धा से कीर्तन करेंगे वहां होगा, हैदराबाद में केवल क्यों होगा। इसलिए ये घटनाएं जो है ना, ये कोई चमत्कारी घटना नहीं है, ये सत्य घटनाएं हैं, और सत्य ही है उसके अंदर। तानसेन ने भी मेघमल्हार राग गाया था, प्रेम से भगवान को पुकारा था और वर्षा हुई थी उस समय। इसलिए हम लोग थोड़ा सा नोट सीखे थे मेघमल्हार राग के। लेकिन मेघमल्हार राग नहीं भी होगा फिर भी आपके हृदय के मेघमल्हार से वर्षा हो सकती है। इसलिए एनीवेज, तो प्रभुपाद जी यहां समझाते हैं कि पृथ्वी माता का कैसा अस्थि है, हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। वो पृथ्वी माता जो है वो देखिए, हम अपने पापी पांव उन पर लेकर चलते रहते हैं जीवन भर, है ना। पृथ्वी माता देवता है, स्वयं भगवान की पत्नी है वो। बराह देव जब आए अवतार लेकर तो पृथ्वी माता को लात मारकर ढकेल दिया गया था गर्भोदक सागर के किनारे नीचे तल में, तो वहां जाकर उनको उठाया था, तब भगवान ने उनको पत्नी के रूप में स्वीकार किया था और अपने कक्षा में रखा था, भूदेवी बिल्कुल। और फिर जब हिरण्याक्ष का वध हुआ तो भगवान जमुना किनारे यहां पर विश्राम घाट पे आए और विश्राम किया उन्होंने, इसलिए उसको विश्राम घाट कहा गया है। तो बाद में कई लोगों ने विश्राम किया, तो विश्राम के ऊपर विश्राम के ऊपर विश्राम। लेकिन भगवान जब विश्राम फरमा रहे थे तभी पृथ्वी देवी वहां प्रकट हो गई अपने शरीर रूप में, और उन्होंने बहुत सारे प्रश्न किए बड़े प्रेम से। उसके उत्तर रूप में भगवान ने ब्रज के हर एक तीर्थ स्थानों का दिव्य वर्णन किया, पूरे ब्रज का वर्णन किया, और वो आज आदि वराह पुराण से प्रसिद्ध है। इसमें हर एक वन का बहुत विस्तार रूप में इतिहास और लीला का भगवान ने स्वयं अपने मुख से वर्णन किया। और पृथ्वी माता और भगवान के संबंध से नरकासुर का जन्म हुआ, मतलब भौम, भूमि का पुत्र भौम, फिर उसने बाणासुर से कुसंगति किया इसलिए वो भौमासुर बन गया। प्रभु भगवान ने अपने हाथ से उसका वध किया। तो ये जो आदि वराह श्वेत वराह मंदिर जो है वो आपको मथुरा में मिलेगा, और जहाँ विश्राम घाट है वहां पर भगवान का विश्राम स्थान भी है। तो पृथ्वी देवी का हम पर बड़ा उपकार है, क्योंकि पृथ्वी देवी ने हमारे लिए बहुत सारा कुछ करके रखा है। अगर पृथ्वी देवी ने प्रश्न नहीं किया होता तो आदि वराह पुराण वृंदावन का गौरव ब्रजमंडल का कैसे तैयार होता। तो ये सब जो देवी देवताएं हैं वो भगवान के भक्त हैं। पृथ्वी माता हमारे लिए बहुत कनेक्शन में है, क्योंकि हम लोग दिन रात उस पर रहते हैं, ये हमारा आश्रय स्थान है, इसी पे हम रहते हैं। लेकिन पृथ्वी माता को हमें भी अपनी तरफ से प्रतिसाद देना चाहिए, फेवरेबल रिस्पॉन्स है ना, अनुकूल जो भावनाओं का और क्रियाओं का और कार्यों का कर्मों का जो रिस्पॉन्स है हमको देना चाहिए। और अगर हम बड़े बड़े संत लोग का जैसा काम नहीं कर सकते, कम से कम भगवान के नाम का जब हम करेंगे तो एक तरफ से वो पृथ्वी के लिए हमारा प्रतिसाद है, थैंक यू वेरी मच, इस प्रकार का भाव है। तो ये पृथ्वी देवी के ही वजह से इस भूमि पर अनंत बार भगवान के अवतार हुए हैं, क्योंकि हर बार जब अत्याचार होता है सबसे पहले कौन भागता है? सबसे पहले गाय बनकर पृथ्वी भागती है। बाकी देवता भी है ना वहां पर, उनको भी कष्ट हो रहा है, देव ये कंस और हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु के द्वारा सबको कष्ट हुआ है, लेकिन कौन करता है शुरुआत उसकी? सबसे पहले पृथ्वी जाती है रोते हुए ब्रह्मा जी के पास, फिर ब्रह्मा जी उनको लेकर भगवान के पास जाते हैं। तो कंस के समय जब ये ऐसा आतंक हुआ था तो पृथ्वी रोते होते गई थी, तो ब्रह्मा जी उनको क्षीरोदक शाही विष्णु के पास सागर किनारे लेके गए और आह्वान किया भगवान का पुरुष शक्तों के द्वारा। फिर भगवान प्रकट हुए और भगवान प्रकट हुए और वो सबको लेकर गौलोक धाम गए, और गौलोक धाम में ये क्षीरोदक शाही विष्णु जो है वो स्वयं श्री हरि के शरीर में विलीन हो गए उनके सामने, सबके सामने। फिर प्रभु रामचंद्र विलीन हुए वहां अवतरित होकर, फिर नरसिंह भगवान प्रकट हुए वो भी विलीन हो गए, फिर नर नारायण प्रकट हो गए वो भी विलीन हो गए, सबकी आंखों के सामने सीन हो रहा है और पृथ्वी अभी भी रो रही है। तो भगवान उसको बोलते हैं, अरे भू मापू देवी, ये गौलोक वृंदावन है, अब कोई रोने का काम नहीं है, ये आनंद भूमि है। तो पृथ्वी अपनी व्यथा व्यक्त करती है, फिर भगवान साक्षात पृथ्वी से संवाद करते हैं और उनको बताते हैं कि हम आएंगे और आपके लिए सब लोगों को लेकर आए, सब देवताओं को आदेश देते हैं, आप सब लोग चले जाओ यादव कुल में, ब्रज कुल में, वृषभानु कुल में, नंद कुल में, सब जगह जन्म लेना, सेटिंग बनाना पूरा, हम आने वाले हैं, और फिर बाद में उतार लेते हैं। तो आप अगर श्रीमद् भागवत दशम स्कंध पढ़ेंगे, पृथ्वी के जब भगवान के जन्म का समय पढ़ेंगे, तो ऐसे कहते हैं कि जब ये बात हुई, भगवान ने सब बताया, पृथ्वी बहुत प्रफुल्लित हो गई, वापस लौट के आई, यथावकाश भगवान का जब जन्म हुआ तब पृथ्वी जो है ना वो बीच रात में कभी फूल नहीं खिलते, कोई फल नहीं खिलता है, सब कुछ जो खिलता है दिन में खिलता है सूरज की उपस्थिति में। बीच रात में सरोवर में कमल खिले हुए थे, बीच रात में पक्षी किलरव कर रहे थे, बीच रात में सब फल फूल से सब पेड़ पौधे भर गए थे, सब नदियां उत्साही होकर भर भर कर बह रही थी, सब पहाड़ों में बाहर आ गई थी, हवा बहुत सुंदर सुंदर खुशबू लेकर बह रही थी। पृथ्वी ने अपना पूरा जो क्या कहते हैं सौंदर्य है वो भगवान के प्रेम की वजह से प्रकट किया पूरा। इसका मतलब क्या है? जब भगवान आते हैं पृथ्वी अपनी फुल परिपूर्ण अवस्था में अपने आप को प्रकट करती है। जैसे समझो अभी किसी का विवाह है, समझो तो जो कन्या होती है वो अपना सबसे बेस्ट श्रृंगार अपने विवाह के दिन करती है ना, उसके आगे भी करेगी लेकिन जो श्रृंगार शादी में करेगी वो सबसे बेस्ट होगा। उस तरह से जब भगवान का अवतरण होता है, भगवान आते हैं तो पृथ्वी अपना बेस्ट से बेस्ट, उसके पास जो भी बेस्ट है वो सब प्रकट करती है। तो हमको भी अगर पृथ्वी से बेस्ट चाहिए तो हमको भी अपना बेस्ट हरिनाम संकीर्तन जो है वो पृथ्वी को देना चाहिए। तो पृथ्वी आपके वाणी से प्रेम से और भक्ति से जब कृष्ण के नाम को और कृष्ण को प्रकट होते हुए देखेगी तो आपके लिए भी दुल्हन की तरह बनकर अपने आप को प्रस्तुत करोगी, मतलब वो भगवान के लिए करेगी, उसका लाभ आपको होगा। तो ये पृथ्वी देवी जो है हम पर बड़ा उपकार करती है। वो भी देखो, आप पृथ्वी पर डालते हो एक दाना, क्या होता है उस दाने के अंदर? उस दाने में से आपको बड़ा वृक्ष देती है, वो अनंत फल देती है उसके अंदर। वो भी एक दाने से आम देती है, एक दाने से कटहर देती है, एक दाने से अमरूद देती है, एक दाने से ऑरेंज देती है, एक दाने से चावल देती है, एक दाने से गेहूं देती है। इतना चमत्कार है देखो आप। कौन सी लेबोरेटरी आप साइंटिस्ट के पास में है जो आपको बीज देंगे, हम अपने लेबोरेटरी में उसको बना के देंगे। और प्रमाण भी ऐसा होता है कि आप एक गेहूं का दाना बीज डालेंगे तो 250 गेहूं के दाने देती है पृथ्वी आपको। आप इतना सा दे रहे हो तो 250 गुना आपको दे रहे हैं वापस, तो एक गुना देने में क्या दिक्कत है हमको, है ना। अभी मैं एक बड़े मशहूर पशु वैद्य जो गाय में बहुत प्रेम रखते हैं उनको मिला, उनको मिला था वृंदावन में बरसाने में। वो मुझे कह रहे थे कि पृथ्वी का सबसे बड़ा पोषण जो है ना वो है गाय उन पर चलना, गौचारण। हम लोग सोचते हैं कि गऊ दूध देगी और बैल खेती करेगा, ये हमारा एक थिंकिंग है, वो गलत नहीं है, सही है। लेकिन वो कहते हैं कि सही जो सेवा है पृथ्वी की वो उस पर गाय बैल को चलाना है, केवल बस जस्ट चलाते रहो वो, तो जब वो चलेंगे तो कहते हैं कि उनके खुरों में से उनका जो है ना वो क्या कहते हैं उसका, हम कहते हैं उसको, क्या कहते हैं हिंदी में उसको, हाँ नहीं वो जो उतरा ऐसा ऊपर ऐसे पीछे पीठ पर क्या जो भी कुछ बोलते हैं आप, उसमें से वैश्विक शक्ति जो है दिव्य शक्ति वो गाय और बैल के चरणों में से पृथ्वी पर प्रवेश करती है, और तब जाकर पृथ्वी को वो शक्ति प्राप्त होती है आपने दिए हुए बीज के द्वारा 250-250 एक एक बीज का आपको उपज देना। फिर वो गाय और बैल जो है वो अपना मूत्र और गोबर डालते हैं, डालते जाते हैं ना वो, उनका तो हर 3 घंटे में उनको मूत्र और गोबर देना ही है। हम लोग दिन में ही 2 बार जाते हैं लेकिन गाय तो हर 3 घंटे में गोमूत्र और गोबर देती रहती है। और वो जब पृथ्वी में प्रवेश करता है तो पृथ्वी की जो शक्ति है उपज की वो हजारों गुना बढ़ जाती है, पृथ्वी की जो क्वालिटी है अन्न देने की वो क्वालिटी भी हजारों गुना बढ़ जाती है, और पृथ्वी सशक्त हो जाती है, पृथ्वी सुपीक हो जाती है। हाँ, उसमें से आप जो भी बनाएंगे वो सुगंधित रहेगा, जैसे आपको सब्जी जो आपने गोभी लगाया तो गोभी में भी स्वाद रहेगा और खुशबू भी रहेगी। जो जो केमिकल यूरिया फर्टिलाइजर डालते नहीं है उसके अंदर, गोबर खाद डालते हैं, उस वो आप सब्जी को पकाएंगे ना घर में, जो माता पका रही है तो पूरे घर में वो सब्जी की खुशबू रहेगी, सबको पता चलेगा आप गोबर की गोभी की सब्जी बन रही है। आज तो गोभी में खुशबू ही नहीं है, कोई सब्जी में कोई फल में स्वाद ही नहीं है, यहाँ पर तो भगवान की दया से गुलाब में खुशबू है, बम्बई में और शहरों में तो गुलाब खाली रंग का होता है, खाली खुशबू तो है ही नहीं उसके अंदर। तो पृथ्वी को क्या चाहिए ये अगर हम समझेंगे और देंगे तो पृथ्वी आपको कभी भी क्या कहते हैं उसको रुसवा नहीं करेगी, कभी दुखी नहीं करेगी आप, क्योंकि वो आप जब उसको एक देते हो तो वो 250 देती है, आपको खाली एक देना है, सबसे पहला प्रेम भगवान के नाम के द्वारा और फिर नेचुरल प्राकृतिक जीवन देना है पृथ्वी को, तो फिर पृथ्वी जो है वो हमें संपृक्त करेगी। और आप ऐसा मत समझना अरे मैं तो क्या हूं, मैं तो बेचारा इतना एकदम तुच्छ हूं और इनसिग्निफिकेंट हूं, मैं क्या कर सकता हूं, ये ऐसा नहीं है। हर एक जीव जैसे पृथ्वी यहां पर भगवान को बता रही है, सबसे पहले क्या बता रही है, हे भगवान मैं आपका अंश हूं, सबसे पहले वो अपना निवेदन दे रही है, मैं कोई एलिगेटर नहीं हूं, मैं आपके हिस्सा हूं, ये शांत करने का प्रयास कर रही हूं भगवान को, और भगवान अपनी लीला कर रहे हैं और पृथ्वी के द्वारा उनका गौरव हो रहा है। यहाँ पर पृथ्वी देवी किसके लिए कर रही है सब कुछ, ये जो खुद के भय से नहीं कर रही है, तो हम सबकी माता है और हम सबके बालक हैं, वो चाहती है कि दुष्ट बालक है उनका संहार हो, जो अच्छे बालक है उनका पोषण हो, और सब अच्छे बालकों का पोषण करने के लिए वो बैठी हुई है, तो कभी भी अपने कर्तव्य चुकती नहीं। लेकिन जब अत्याचार होते हैं, पाप होते हैं, असत्य का वृद्धि होती है, तब ये सब होता है। तो आज हम कलयुग में जी रहे हैं तो असत्य असत्य है, पर पाप ही पाप है सब जगह पे। लेकिन हम जो कम मात्रा में है दुनिया में, हमारा संख्या कम है वैसे, इतनी संख्या पापी लोगों की उतने से हम लोग तो बहुत थोड़ी संख्या में, लेकिन फिर भी इतनी थोड़ी संख्या में अगर एक व्यक्ति भी अगर शुद्ध नाम लेता है भगवान का, अपराध शून्य, तो पृथ्वी का पोषण हो सकता है। प्रभुपाद जी क्या बोलते थे, मैं जा रहा हूं अमेरिका प्रचार कर रहा हूं, इनमें से एक व्यक्ति अगर शुद्ध भक्त बनेगा ना तो भी मेरा कार्य सिद्ध हो जाता है, 1% प्योर डिवोटी। तो प्रभुपाद जी तो कई बनाए हैं, ऐसा नहीं कि एक ही बनाए, कई बनाए, कई जो सब विश्व का उद्धार कर रहे हैं, उनके प्रभाव से कितने लोग कहां कहां किस किस देश में अभी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो ये सब जो देश विदेश में 600 सेंटर में हो रहा है इस्कॉन के अंदर, और भी कई संस्थाएं अपने अपने संप्रदाय के माध्यम से भगवान नाम ले रही है, जो जो संत लोग गुफा में बैठकर भगवान के नाम का भजन करते हैं, उसलिए पृथ्वी अभी भी हमको कुछ दे रही है। और हमारा और आपका हमारा ये सब विचार होना चाहिए, कि बहुत देर यहां रहने का विचार नहीं करना चाहिए। जितना समय है उसमें भगवान नाम का शुद्ध जप करके जितना भी हो सके पृथ्वी को प्रतिसाद थैंक यू बोल के जितना हो सके जल्दी निकल जाना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर क्या होगा, पाप बढ़ने वाला है, घोर कलयुग आने वाला है, फिर पेड़ पर पौधे होंगे, मतलब पृथ्वी पर पौधे होंगे, फल फूल नहीं होगा, कितना भी बीज डालेंगे तो अन्न नहीं आएगा उसके अंदर से, जमीन के अंदर का जल नष्ट हो जाएगा। एक बात बताना भूल गया मैं, जब गाय चलती है तो जमीन के अंदर जल को बनाए रखने की शक्ति निर्माण होती है, जल बह जाता नहीं है, जल जमीन को, जल को पकड़ देती है, जमीन गीली रहती है, सुपीक हो जाती है, और आप जहां भी कुआं खोदेंगे बोरवेल करेंगे तो पानी आएगा उसमें से। ये प्रिंसिपल है सब कुछ प्राकृतिक जीवन, गौ रक्षा होने के बाद में, गौ सेवा होने के बाद में फिर कृषि मतलब हमारा खेती, और फिर वाणिज्य, फिर कॉमर्स, उसके बाद में फिर धन और उसका व्यवहार होता है। पहले है गौ रक्षा, और गौ रक्षा भी आज कहना एक्चुअली सही नहीं है, क्योंकि गौ की रक्षा हम लोग नहीं कर सकते, गौ हमारी रक्षा करती है, गौ कभी भी हमारी, हम उनकी सेवा नहीं, रक्षा नहीं करते, ये गलत फहमी है हमारी कि वो हम उसकी रक्षा करते, गौ हमारी रक्षा करती है, हमारे जीवन को संभालती है, हमारे जीवन को पालती है, हमारे जीवन को हर तरफ से सहायता करती है, हर तरफ से हमारा जो बेसिस है, जो मूलभूत नींव है हमारे जीवन की, वो गौ बनाती है, पृथ्वी माता को सशक्त करती है अपने चरणों के स्पर्श से, दैवी शक्ति को पृथ्वी में संचालित करती है। तो हम पृथ्वी माता के बहुत ऋणी हैं, और यहां की पृथ्वी माता जो है वो स्वयं बलराम जी हैं, तो कितना सावधान रहना चाहिए हमको, हम लोग किस पर चल रहे हैं, मुंबई में जाएंगे तो भी वो पृथ्वी माता है, यहां पर तो बलराम जी, मुंबई में दिल्ली में भी वो पृथ्वी माता है हमारी, सात माताओं से एक एक माता का वर्णन पृथ्वी का किया गया है, आप जानते हैं ना, एक हमारी माता है, एक गौ माता है, तीसरी भूमि माता है, चौथी हमारे गुरु की माता है, चौथी पांचवी हमारे राजा की माता है, छठवी हमारे ब्राह्मण की पत्नी है, और सातवीं हमारी नर्स है, परिचारिका। ये सात माताओं का आदर जहां होता है उस देश की तरक्की होती है, देश का उद्धार होता है। इन सात माताओं का आदर्श आदर करेंगे, देश कभी भी गलत स्थिति में नहीं जाएगा। और ब्रज की व्याख्या क्या है, ब्रज की व्याख्या है जहां पर गायें निर्भर होकर विहार करती है और दिल भर के दूध देती है, विहार होने के बाद जहां निर्भयता है गाय के लिए, वो देश ब्रज है, पूरा भारतवर्ष ब्रज देश था, ब्रज भूमि थी, अभी तो इतना सिकुड़ के इधर भी ब्रज भूमि होना बंद हो गया, क्योंकि यहां पर भी गायों को पकड़ पकड़ के मारते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोगों का अपना भजन जो है वो और तीव्र करना चाहिए, और गहराई में लेके जाना चाहिए, और सिंसियर प्रामाणिक भावना से करनी चाहिए। ये हमारा केवल हमारे लिए उद्धार करने का कार्य नहीं, हमारा ये विश्व के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये हमारा क्या कहते हैं उसको, सहयोग है विश्व के कल्याण के लिए। जब हम खुद जप करते हैं ध्यानपूर्वक, इसका मतलब विश्व के कल्याण के लिए भी सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि भगवान का नाम केवल एक व्यक्ति का उद्धार नहीं करता है, जब हम अपने लिए भी करते हैं तो अनेक लोगों का उद्धार, पृथ्वी पर फल फूल खिलने का काम भी हो रहा है। हमको ये जानते हुए कि हमारा, हम कितने भी तुच्छ होंगे, कितने भी अनुरूप होंगे भगवान का अंश, फिर भी हमारा जो जप है वो विश्व के लिए हमारे स्तर पर कल्याणकारी ही होता है। इसलिए हमको समझना चाहिए कि हम कितने भी इनसिग्निफिकेंट होंगे, हमारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है एक मनुष्य होने के नाते, कि मनुष्य होने के नाते जब हम जप करते हैं भगवान के नाम का तो कितना बड़ा दिव्य कार्य होता है जो हम लोग समझ भी नहीं सकते हैं। इसलिए हम सबको भगवान के नाम का बहुत प्रेम से, प्रामाणिकता से, हृदय से, समर्पित भाव से, एकाग्रता से जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे जाकर पृथ्वी बहुत भगवान का गौरव करती हैं, फिर भी भगवान बहुत ही क्रोधित रहते हैं। उसके बाद फिर पृथ्वी अलग तरीके से भगवान से बात करने लगती है, और धीरे धीरे फिर भगवान को वो बताती है कि कैसे कैसे मुझसे आपको बीज मिलेंगे, या आगे का वर्णन आप अगले दिन में सुनोगे। श्री महाराज पृथु महाराज की, श्री भूमि देवी की, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय हो। बहुत धन्यवाद सबका, आप सबका मैं ऋणी हूँ, कृतज्ञ हूँ, आपने मुझे मौका दिया यहाँ बोलने का, धन्यवाद सबका।